इस प्रकार वास्तव में जो भावना होती है उसका नाम अशुचित्व अनुपेक्षा। माने पवित्रता तो दर्शन ज्ञान चारित्र से होती है, इन बाह्य पदार्थों से शरीर को शुद्ध नहीं किया जा सकता। दर्शन ज्ञान चारित्र से आत्मा तो शुद्ध होती है, शरीर भी परम औदारिक हो जाता है। एवं यस्म संस्मरतः शरीर निर्वृत हो, इस प्रकार ऐसा स्मरण करते रहे, बार बार अच्छी तरह से स्मरण करने वाले साधु को शरीर के प्रति निर्वेद हो जाता है, विरक्ति होती है और निर्विण्य और निर्विण्ण होते हुए जन्मोदित तरणाय चित्तम समादत्ते, अपने मन को संसार समुद्र से तैरने के लिए स्थिर कर लेते हैं। एक बार आचार्य जी ने बोला था पटोरा जी ने कि अशुचित्वानुप्रेक्षा का चिंतन करने से क्या होगा, यही विचार आएगा कि आत्मस्वभाव को जो जानने वाले साधु हैं उनके मन में ये भाव आएगा कि कहां तो इतना पवित्र आत्मस्वभाव और कहां इतना अपवित्र शरीर, माने अति पवित्र और अति अपवित्र, इनका जोड़ा कैसे बना है, ये कैसे साथ में है। तो फिर इस अपवित्र स्थान से तो निकल करके सिद्धालय जाना ही फेस कर, ऐसी भावना होती है, संसार समुद्र से तैरने की इच्छा होती है। आश्रव संवर निर्जरा पूर्वोक्ता, आश्रव संवर और निर्जरा, ये तीन अनुप्रेक्षाएं पहले कही जा चुकी है, अपि फिर भी इहोपन्यस्यते, यहां पर फिर से इनको उपस्थित किया जाता है तद्गत गुणदोष भावनार्थ। आश्रव संवर निर्जरा में जो गुण दोष है उनकी भावना के लिए, आश्रव में दोष है संवर निर्जरा में गुण है, इस भावना के लिए तद्य था वो इस प्रकार करना। आश्रवा इहाम अपाय युक्ता, आश्रव इस जन्म में और अगले जन्म में अपाय युक्ता, संकट से युक्त है। महानदी स्रोतो वेग तीक्ष्णा, महानदी के स्रोतो वेग, स्रोतो वेग यानी जो स्रोत है उसके वेग के समान तीखे हैं, तीक्ष्ण है। इंद्रिय कषाय अव्रत आदय, कैसे है वो आश्रव, इंद्रिया है, कषाय है, अव्रत आदि है, 57 तत्तेन्द्रियाणी तावत स्पर्शनादीनी, उनमें इंद्रियां कैसी है, स्पर्शनादिक 5 है, वन गज वायस पन्नग पतंग हरिणादीन व्यसनार्णवम अवगाहयंती, ये 5 इंद्रियां इन इन प्राणियों को संकट के सागर में डुबा देती है। जैसे स्पर्शन इंद्रिय वन गज जंगली हाथी को संकट ग्रस्त कर देती है, फिर रसना इंद्रिय वायस यानी मछली को संकट ग्रस्त करती है, फिर घ्राणेन्द्रिय पन्नग यानी सर्प को संकट ग्रस्त कर देती है, पन्नग वायस का अर्थ कौआ होता है, स्पर्श इंद्रिय जंगली हाथी को संकटग्रस्त करती है, रसना इंद्रिय वायस को अर्थात कौवे को संकटग्रस्त करती है, कैसे नहीं क्रम से ही हुआ। फिर सर्प, सर्प को घ्राणेन्द्रिय संकटग्रस्त करती है, और पतंग को चक्षुर इंद्रिय संकटग्रस्त करती है, और हरिण आदि को कर्णेन्द्रिय, ये तो बिल्कुल ठीक बैठ रहा है, पहला चौथा और पांचवा ये तो एकदम फिट है। लेकिन ठीक है, वो मदारी उसको चंदन के पेड़ से पकड़ लेता होगा, ऐसा हो सकता है, लेकिन कौवे का क्या है, रसना इंद्रिय के कारण कौवा संकटग्रस्त होता है, ये विशेष दृष्टांत है, क्योंकि मीन का दृष्टांत आता है प्रसिद्ध मछली का, रसन इंद्रिय के कारण मछली संकटग्रस्त हो जाती है। वयस शब्द का अर्थ हमने मछली समझ लिया था, क्योंकि वो पहले ग्रंथों के दृष्टांत के आधार पर, वयस का अर्थ होता तो कौवा है, क्योंकि कायोत्सर्ग के दोष में भी वयस दोष होता है। कौवे के समान एक तरफ ऐसे देखना वो दोष, तथा इसी प्रकार कषायादयोपि इह कषायादि भी इस जन्म में वध बंधाप यशः परिक्लेशादीन जनयन्ति। वध यानि मारपीट, बंद यानि जेल आदि, और अपयश और परिक्लेश आदि उत्पन्न करते हैं। अमूत्र च और आगामी जन्म में नाना गतिश विभिन्न गतियों में बहुविध दुख प्रज्वलितासु, कैसी हैं वो गतियां, अनेक प्रकार के दुखों से प्रज्वलित हैं, परिभ्रमयंती भटकाते हैं अगले जन्मों में। इत्येवम् आश्रव दोषानुचिंतनम् आश्रव अनुपेक्षा, इस प्रकार आश्रव के दोषों का अनुचिंतन करना आश्रव अनुपेक्षा है। एवं यस्य चिन्तयतः क्षमादिषु श्रेयस्तु बुद्धिर् न प्रच्यवते, इस प्रकार ऐसा चिंतन करने वाले जो मुनि है उनकी श्रमादिक के प्रति जो श्रेयस्कर बुद्धि है, माने श्रमादिक हितकारी है ऐसी जो मान्यता है, वो छूटती नहीं है। सर्व एते आश्रव दोषाः कूर्मवत् समृतम् आत्मनो समृत आत्मा आत्मनो न भवन्ति, ये सारे के सारे आश्रव संबंधी दोष कछुए के समान समृत की है आत्मा जिन्होंने उनके नहीं होते। संवर में चले जाओ तो फिर ये दोष नहीं लगते। यथा जिस प्रकार महारणवे नावो विवर पिधाने सति, महासमुद्र में नाव के छिद्र बंद कर लेने पर क्रमात् श्रुत जलाभि प्लवे सति, क्रम से श्रुत यानी अंदर आए हुए जल का अभिप्लव होने पर तदाश्रयाणम विनाशो वश्यम भावे, विवर पिधाने सती। तो वही हम सोच रहे थे टिप्पण में जो दिया ना वो सही लग रहा है, विवरा पिधाने सती, छिद्र बंद हो जाएगा तो फिर पानी कहां से आएगा। तो नीचे जो टिप्पण में पाठ है ना, छिद्र बंद न होने पर नाव में पानी भर आता है, और पानी भरने से जो नाव में बैठने वाले आश्रित जन हैं उनका विनाश अवश्यम भावी होता है, पानी में डूब जाते हैं। और छिद्र पिधानी च, और छिद्र ढक जाने पर बंद हो जाने पर निरुपद्रवम अभिलषित देशांतर प्रापणम, बिना किसी उपद्रव के अभीष्ट स्थानांतर को प्राप्त हो जाते हैं। तथा उसी प्रकार कर्मागमत द्वार संवरणे सति, कर्मों के आगमन द्वार का संवरण हो जाने पर नास्ति श्रेय प्रतिबंध, अपने आत्म कल्याण में कोई प्रतिबंध अवरोध नहीं है। इति संवर गुणानुचिंतनम संवर अनुप्रेक्षा, इस प्रकार संवर के गुणों का बारंबार चिंतन करना संवर अनुप्रेक्षा है। एवं यस्य चिंतयतः, इस प्रकार ऐसा चिंतन करने वाले मुनि के संवरे नित्योद्युक्तता भवति, संवर में सदैव सावधानी रहती है। ततश्च और उसके कारण निःश्रेयस पद प्राप्ति रीति, मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाती है। निर्जरा वेदना विपाक इति उच्यते इत्युक्तम्, निर्जरा किसको कहा, वेदना के विपाक को, यानी वेदना रूप विपाक को, यानी कर्मों के फल को भोग करके उसको पका देना, वेदना विपाक का नाम निर्जरा है। इत्युक्त साद्वेदा, वो दो प्रकार की अबुद्धिपूर्वक कुशल मूला चेती, जो अबुद्धिपूर्वक हो रही है अथवा दूसरी कुशल मूला चेती। तत्र नरकादिषु गतिषु, उनमें दो निर्जराओं में नरकादिक गतियों में कर्म फल विपाक जा अबुद्धिपूर्वक, कर्म फल का जब विपाक होता है तो उससे उत्पन्न होने वाली अबुद्धिपूर्वक निर्जरा है सा अकुशलानुबंध, उसमें कुशल का संपर्क नहीं होता इसलिए वो अकुशल है। और परिषह जय कृते, परिषयों पर विजय करने पर कुशल मूला, कुशल मूला निर्जरा होती है सा शुभानुबंधा, वो शुभ से संपर्क कराने वाली होती है। निरनुबंधा चेती अथवा शुभ और अशुभ दोनों से संपर्क नहीं कराने वाली भी हो सकती है वो निर्जरा। इत्येवं निर्जराया गुण दोष भावनम्, इस प्रकार निर्जरा के गुण और दोषों का चिंतन करना निर्जरानुप्रेक्षा, निर्जरानुप्रेक्षा है। एवं यस्यानुस्मरत, इस प्रकार इसका बारंबार अनुस्मरण करने वाले मुनि के कर्म निर्जरायी प्रवृत्ति होती, कर्म निर्जरा के लिए प्रवृत्ति होने लगती है। लोक संस्थान आदि विधिर व्याख्यात, लोक के संस्थान आदि की जो प्रक्रिया थी वो बदला चुके थे। समन्ताद अनंतस्यालोकाकाशस्य बहुमध्यदेश भाविनो लोकस्य, सब तरफ से अनंत लोकाकाश के बीच में बिल्कुल बीच वाले भाग में रहने वाला लोक है, उसके संस्थान आदि की विधि बदला चुके हैं। तत्स्वभाव अनुचिंतनम, उसके स्वभाव का अनुचिंतन करना, बारंबार विचार करना लोकानुप्रेक्षा। एवं व्यस्यात्यवस्यत तत्व ज्ञान विशुद्धिर्भवति, इस प्रकार से इस लोक का बारंबार चिंतन करने वाले साधु के, निर्णय करने वाले साधु के तत्व ज्ञान संबंधी विशुद्धि होती है। फिर बोधि दुर्लभ अनुप्रेक्षा का चिंतन देखिए कैसा है। एकस्मिन निगोत शरीर, एक निगोत शरीर में जीवा सिद्धानाम अनंत गुणा, जो जीव रहते हैं वो सिद्धों के अनंत गुण प्रमाण है। एवं सर्वलोको निरंतरम निश्चित स्थावरई रतस तत्र त्रसता बालुका समुद्रे पतिता वज्र सिकता कणिका एव दुर्लभ, इस प्रकार सारा लोक निरंतर माने बिना किसी अंतराल के स्थावरों से निश्चित है, खचाखच भरा हुआ है, माने सारे लोक में निगोद शरीर व्याप्त है और एक निगोद शरीर में सिद्धों से अनंत गुणे जीव है। तत्र उन स्थावरों में, स्थावरों में से निकलकर त्रसता, त्रस पर्याय प्राप्त करना, बालुका के समुद्र में यानी रेगिस्तान में पड़ी हुई वज्र सिकता कणिका एव, एक छोटी सी हीरे की कणिका हो, रेत रेगिस्तान में अगर कहीं छोटी सी हीरे की कणिका पड़ी हो तो उसकी प्राप्ति कितना दुर्लभ है। मैंने पूरे सब तरफ रेत ही रेत है, लेकिन एक उसमें हीरे की कणिका हो, उसका मिलना जितना कठिन है उतना ही स्थावर पर्याय से त्रस पर्याय का मिलना कठिन है। तत्र च और त्रस पर्याय में भी विकलेन्द्रियाणाम भूयिष्ठत्वात्, विकलेन्द्रियों की अधिकता होने के कारण पंचेन्द्रियता गुणेषु कृतज्ञतेव कृच्छ्रलभ्य, पंचेन्द्रिय पर्याय का प्राप्त होना, जैसे गुण तो बहुत से होते हैं लोगों में लेकिन किए हुए उपकार को मानना भी एक गुण है, ये गुण बहुत मुश्किल से पाया जाता है। तो इस गुण के समान, कृतज्ञता के समान दुर्लभ पंचेन्द्रिय पर्याय त्रस पर्याय। और तत्र च पंचेन्द्रिय पर्याय भी मिल गई तो तिर्यक्षु तिर्यंचों में पशु मृग पक्षी सरीसृपादिषु बहुषु सत्सु, बहुत सारे भेद है पंचेन्द्रियों के, पशु मृग पक्षी सरीसृप माने रेप्टाइल्स जो होते हैं ना, पेट के बल सरकते हैं जो, आदि बहुषु सत्सु, इनकी बहुलता होने पर मनुष्य भावश चतुष्पथे रत्न राशि दुरासद। मनुष्य पर्याय की प्राप्ति चौराहे पर अगर रत्नों का समूह मिल जाए तो लगभग असंभव है कि चौराहे पर कभी रत्नों का समूह मिल जाए, तो उसके समान दुर्लभ है। तत्प्रच्यवे च पुनस्तुत्पत्तिर, मनुष्य पर्याय छूट जाने पर फिर से उसमें उत्पत्ति होना दग्ध तरु पुद्गल तद्भावोपपत्तिवत दुर्लभा। जले हुए पीपल के पेड़ के उन्हीं परमाणुओं से वापस वैसा ही पीपल का पेड़ बन जाए वो कितना मुश्किल है, वैसे मनुष्य पर्याय खोकर वापस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करना उतना ही कठिन है। निश्चित है तो अनुप्रेक्षा का अर्थ ही अनु पुनः पुनः। तल लाभे च, फिर मनुष्य पर्याय का लाभ हो भी जाए तो देश कुलेंद्रिय संपन्नी संपत्त निरोगत्व निरोगत्वानी उत्तर उत्तर तो अति दुर्लभानी। बोले कि उसमें अच्छा देश मिलना मनुष्य पर्याय में वो भी दुर्लभ है, फिर अच्छे देश में अच्छा कुल मिल जाना और दुर्लभ है, अच्छे कुल में इंद्रियों की संपत्ति प्राप्त होना वो और दुर्लभ है, अथवा इंद्रियां पूरी होकर के संपत्ति प्राप्त होना धनवान होना ये और दुर्लभ है, फिर निरोगता होना और दुर्लभ है, ये सब अधिक अधिक दुर्लभ है। दुर्लभ यानी कठिनाई से प्राप्त होने योग्य। सर्वेष्वपि तेषु लब्धेषु, इन सब की उपलब्धि हो जाने पर भी सद्धर्म प्रतिलंबो यदि न स्यात्, अगर सच्चे धर्म का लाभ न हो तो व्यर्थम जन्म, तो जीवन बेकार है, व्यर्थ है। किसके समान? वदन में दृष्टि विकलम, चेहरा बहुत सुंदर है लेकिन आंखें नहीं है, उसके समान। आंखों से रहित, नेत्रों से रहित मुखमंडल के समान। तमेवं कृच्छ्र लभ्यं धर्मम अवाप्य, इस प्रकार उस कठिनाई से प्राप्त करने योग्य धर्म को पाकर विषय सुखे रंजनम, फिर विषय सुख में राग करना भस्मार्थम चंदन दहनम एव विफलम। बोले कि राख नहीं मिल रही है तो बर्तन मांजने के लिए कहां से कुछ राख तो लाना पड़ेगी, तो चंदन का एक टुकड़ा पड़ा था उसको जला दिया, अब मांज लो बर्तन बोलो, तो ऐसा विफल मतलब मूर्खतापूर्ण प्रयास है। यानी धर्म को प्राप्त करके भी विषय सुखों में प्रीति करना ऐसा ज्ञान पूर्ण कार्य है। फिर इसके आगे विरक्त विषय सुखस्य, विषय सुख से जो विरक्त हुए हैं उनका तपो भावना धर्म प्रभावना सुख मरणादि लक्षण समाधिर दुरवापह। तपस्या की भावना, धर्म की प्रभावना और सुख मरण आदि है नाम जिसका, माने शांतिपूर्वक मृत्यु को प्राप्त होना, ये सब ऐसी जो समाधि है वो दुरवापह अत्यंत मुश्किल से प्राप्त होने वाली है। तस्मिन सति तपो भावना और धर्म की प्रभावना, जो संसार सुख से विरत हो गए हैं विरक्त हो गए हैं उनमें तप की भावना, उनमें धर्म की प्रभावना और उनमें सुख पूर्वक मृत्यु को प्राप्त होना आदि है लक्षण जिसका, ऐसी समाधि दुरवापह बहुत कठिन है। यानी विरक्त होने पर भी इनकी प्राप्ति और दुर्लभ है। तस्मिन सति बोधि लाभ फलवान, अगर यानी विषय सुखों से विरक्त होकर के फिर धर्म प्रभाव न करने की क्षमता भी हो ना, सबके पास तो नहीं हो सकती, वो और दुर्लभ है। तपो भावना भी सबके अंदर नहीं हो सकती, पुलाक मुनि में तो होती नहीं है, वो और दुर्लभ है। और सुख मरण शांतिपूर्वक, मतलब बिना वेदना के और बिना किसी आकुलता के अच्छी तरह समाधि मरण हो जाए, ये और दुर्लभ है। तो इस प्रकार का जो समाधान है या समाधि है वो दुर्वाप कठिनाई से प्राप्त हो, तस्मिन सति बोधि लाभ फलवान। और समाधि हो जाए तो फिर बोधि लाभ जो है वो फलवान यानी सार्थक है। भवती इति चिंतन, ऐसा चिंतन करना बोधि दुर्लभानुप्रेक्षा, बोधि दुर्लभ अनुप्रेक्षा है। एवं यस्य भावे तो बोधि प्राप्ति प्रमादो न कदाचित अपि भवति। इस प्रकार ऐसी भावना करने वाले मुनि के बोधि की प्राप्ति करके प्राप्ति होने पर प्रमाद कभी नहीं होता। बार बार बोधि दुर्लभ की भावना करने से प्रमाद नहीं होता, प्रमाद से तो पतन होता है, और कोई कारण नहीं है पतन का। धर्म से पतित होने का कारण क्या है? प्रमाद है। क्या नहीं, वो तो यहां तो कह रहे हैं कि बोधि का लाभ समाधि होने पर सार्थक है। अब जिसका बोधि लाभ ही नहीं है तो समाधि कहां से हो जाएगी? वो अनुवाद में होगा, मूल में नहीं है। मूल में देख लो, अपन अभी देख लो, दूसरा भाग आदि पुराण का है ना, उसको देख लेंगे फिर। दूसरा जो उत्तरखंड है ना आदि पुराण का दूसरा भाग, उसमें लिखा होगा, हो ही नहीं सकता मूल में। और एक बार देखा भी था शायद बीच में, अयं जिनोपदिष्टो धर्मो हिंसा लक्षण। यह जो जिनेन्द्र भगवान द्वारा उपदिष्ट धर्म है वो अहिंसा लक्षण है, अहिंसा लक्षण वाला है। अहिंसा लक्षण यानी अहिंसा उसका नाम है, अहिंसा धर्म ही जिनेन्द्र धर्म है। सत्याधिष्ठित, सत्य उसका आधार है, विनय मूल है, विनय उसकी जड़ है, क्षमा बल है, क्षमा उसकी शक्ति है, ब्रह्मचर्य गुप्त है, ब्रह्मचर्य उसकी बाड़ी है यानी सुरक्षा। और उपशमा प्रधान है, शांति उसमें प्रधान है। नियति लक्षण है, नियति उसका लक्षण है, स्वरूप। यानी ये जो धर्म है इसमें नितराम यमनम नियति ही, यमनम यति ही, यमन का अर्थ होता है संयम, और नियति का अर्थ होता है खूब अच्छी तरह से संयम रखना, वही उसका लक्षण है। निष्परिग्रहता आलंबन है, और निष्परिग्रह पना ही उसका आलंबन आधार सहारा है। अस्य अलाभात, इस धर्म का लाभ न होने के कारण अनादि संसारी जीवा परिभ्रमंती, अनादि संसार में जीव परिभ्रमण करते रहते हैं। दुष्कर्म विपाकजम दुखम अनुभवंत है, और पाप कर्म के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले दुख का अनुभव करते हुए संसार में भटकते हैं। अस्य पुनः प्रतिलंबे, इस धर्म का लाभ होने पर विविध अभ्युदय प्राप्ति पूर्विका निःश्रेयसोपलब्धिर् नियता इति चिंतन। इस धर्म का लाभ होने पर अनेक प्रकार के अभ्युदय माने स्वर्गीय सुखों की प्राप्ति पूर्वक मोक्ष सुख की प्राप्ति होना नियत फल है, इसका निश्चित है। ऐसा चिंतन करना धर्म स्वाख्या तत्वानुप्रेक्षा, धर्म नामक धर्म है सुंदर नाम जिसका, उसके स्वरूप की अनुप्रेक्षा हो गई। तो धर्म स्वाख्या तत्वानुप्रेक्षा एक ही शब्द है, क्योंकि आश्रव सुंदर नाम तो नहीं हो सकते, आश्रव तो अशुभ है, संसार भी कोई अच्छी चीज नहीं है, इसलिए धर्म के साथ ही स्वाख्या लगाया, तो वो अनुप्रेक्षा होगी। एवं यस्य चिंतयेत् धर्मानुरागात् सदा प्रतियत्नो भवति। इस प्रकार ऐसा धर्म का स्वरूप चिंतन करने वाले मुनि का धर्मानुराग होने के कारण सदा प्रतियत्न, नहीं उस जो नाम दिए है ना अनुप्रेक्षा के, अनुप्रेक्षा सुंदर हो सकती है क्योंकि उसका परिणाम अच्छा है, लेकिन वो जो जिसका चिंतन कर रहे हैं, जैसे अशुचि है, अशुचि तो कोई सुंदर वस्तु नहीं है ऐसा, तो धर्म के प्रति अनुराग होने के कारण सदा प्रतियत्न बरती, हमेशा सावधानी बरतती है। नियति लक्ष्मी, नियति, नियति का अर्थ क्या? संयम। नी नित्राम यति, यानी यति यमनम यति, संयम। वो तो सभी लोग जोड़ते हैं, उसमें क्या बात हो गई? प्रासंगिक अर्थ निकालना चाहिए ना। देखो बाकी सबके साथ मैच होना चाहिए। देखो अहिंसा, अहिंसा पूर्णता कहां बनेगी? जहां संयम है वहां। फिर सत्य का आधार कहां बनेगा? जहां सत्य महाव्रत और सत्य धर्म है वहां। फिर विनय का मूल कहां बनेगा? जहां विनय तप है। फिर क्षमा बल कहां बनेगा? जहां उत्तम क्षमा है। फिर ब्रह्मचर्य गुप्त कहां बनेगा? जहां ब्रह्मचर्य महाव्रत ब्रह्मचर्य धर्म है। फिर उपशम प्रधान कहां बनेगा? जहां बिल्कुल शांति हो, चारों कषायों का उपशम हो। फिर नियति लक्षण और निष्परिग्रहता, उसके आगे और भी पुष्टि हो रही है उसकी। निष्परिग्रह अवस्था वाली कौन सी नियति है? वही संयम। बिल्कुल सब समझ आ गए। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 बातें बताई। वो तो सब समा गया ना। उपशम में तो बहुत कुछ आ गया, उत्तम आर्जव वगैरह सब उपशम में आ जाते। एवं अनित्यत्वादिक अनुप्रेक्षा सन्निधान है, इस प्रकार अनित्यत्वादिक अनुप्रेक्षाओं के सन्निधान में उत्तम क्षमादि धारणात्, उत्तम क्षमादिक को धारण करने से महान संवर होती, बहुत बड़ा संवर होता है। मध्य अनुप्रेक्षा वचन उभयार्थम, अनुप्रेक्षा धर्म और परिषय इन दोनों के बीच में रखी गई, ठीक है ना। सूत्र में क्या कहा? सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिषय, धर्म और अनुप्रेक्षा फिर परिषय, अनुप्रेक्षा धर्म और परिषय के बीच में आ गई ना। क्यों? तो बोले उभयार्थम, धर्म को भी लाभ पहुंचाती है अनुप्रेक्षा, परिषय जय में भी सहायक होती। अनुप्रेक्षा ही भावयन, अनुप्रेक्षा की ही भावना करता हुआ उत्तम क्षमादीश प्रतिपालयति, उत्तम क्षमादि का प्रतिपालन कर पाता है। परिषयांश्च जीतुम उत्साहते, परिषयों को जीतने के लिए उत्साहित होता है अनुप्रेक्षा की भावना करने वाला। के पुनस्ते परिषा किमर्थम वा ते संयन्ते इति इदम आह, वे परिषद कौन से हैं और उनको क्यों सहा जाता है? इसलिए यह सूत्र कह रहे हैं मार्गा च्यवन निर्जरार्थम परिशोधव्याह परिषहः। संवरस्य प्रकृतत्वात्, संवर का प्रकरण होने के कारण तीन मार्गो विशिष्यते, उस संवर पूर्वक जो मार्ग हो रहा है वो संवर मार्ग है, ऐसा विशेषण लगा लेना। मार्ग शब्द है ना सूत्र में, कौन सा मार्ग? संवर मार्ग, संवर मार्ग इति। तदच्यवनार्थम, उससे च्युत न होने के लिए, निर्जरार्थम च, और निर्जरा के लिए भी परिशोधव्या परिषा, परिषाओं को सहन कर लेना चाहिए। क्षुत पिपासादि सहनम कुर्वन्तः, क्षुधा और पिपासा आदि को सहन करने वाले जिनोपदिष्ट दिष्टान मार्गात, जिनेन्द्र भगवान द्वारा उपदिष्ट मार्ग से अप्रच्छव मानास, विचलित नहीं होते, तन मार्ग परिक्रमण परिचयेन, और उस मार्ग के परिक्रमण के परिचय से, माने उस मार्ग पर